प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व कि आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोता भाई बहनों व मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के बाइबल अध्ययन में भाग लेने को अपनी बाइबल, पेन और नोटबुक लेकर तैयार हैं। आपके सुंदर पत्रों के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपके प्रश्न इस बात का संकेत हैं कि आप कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उससे आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप मुझे इसी प्रकार पत्र लिखते रहें, क्योंकि मेरे परिश्रम का पारितोषिक आपके ये सुंदर पत्र ही तो हैं। सो जब आप कार्यक्रम सुनते हैं तो पत्र लिखना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से लू का रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 16वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। 16वें अध्याय का मुख्य विषय है अधर्मी भंडारी। किंतु इससे पूर्व के हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सहायता मांगें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। दयालु प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने और ग्रहण करने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें, ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें और आपके उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, या किसी बुरी आदत में घिरा हुआ है, या किसी भयंकर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों हम नए नियम से लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 16वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अध्याय 16 में हम सर्वप्रथम अधर्मी भंडारी के दृष्टांत का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु यीशु मसीह की अन्य शिक्षाओं पर दृष्टि डालेंगे। अधर्मी भंडारी के दृष्टांत को बहुधा गलत ढंग से समझा जाता है और इसका गलत अर्थ निकाला जाता है। उसका कारण यह है कि यहां प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु जी इस दृष्टांत में कुटिल या अधर्मी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में ये भंडारी अत्यंत कुटिल व धूर्त व्यक्ति है। अधिकांश लोगों का विचार है कि जिसका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह द्वारा यहां किया जा रहा है, वह व्यक्ति उस कथा का नायक होगा और अच्छे चरित्र का उदाहरण होगा। यदि आपकी भी ऐसी ही विचारधारा है तो आपको इस दृष्टांत को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। वास्तव में यह व्यक्ति एक दुष्ट अर्थात बदमाश भंडारी था। स्मरण रहे, लूका ने बहुधा विरोधाभासी दृष्टांतों का भी प्रयोग किया है और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रयोग कर रहे हैं जो इस संसार के सिद्धांतों का पालन करता है। प्रभु के वचन ने हमें बताया है कि संसार अपनों से प्रेम करता है और उनसे घृणा करता है जो परमेश्वर के हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 19वें पद में प्रभु जी कहते हैं कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं, क्योंकि तुम्हें चुनकर संसार से निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। मित्रवर, परमेश्वर की संतान का संसार से संबंध नहीं होता और ना ही वह संसार की रीति के अनुसार चलती है। रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के 2 पद में सिखाया गया है कि इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली ग्रहण योग और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। और अंत में प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि संसार और उसमें पाई जाने वाली वस्तुओं से प्रेम ना करो, 1 यूहन्ना उसका 2:15। मित्रों, जो कुछ इस संसार में है उसे हम जीवन की व्यवस्था कहते हैं। यह अधर्मी भंडारी उसी व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है, ये उसी के द्वारा संचालित है। संसार का सर्वप्रथम नियम है आत्म परिरक्षण या आत्मरक्षा, अर्थात सबसे पहले अपने विषय में सोचना, तत्पश्चात दूसरों के विषय में। हमारा अनुभव है कि संसार की व्यवस्था धूर्त व कपटी लोगों के पक्ष में है। संसार की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जब तक वह दोषी साबित ना हो जाए वह निर्दोष समझा जाता है, किंतु परमेश्वर का नियम इसके विपरीत है। परमेश्वर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब तक वह निर्दोष साबित ना हो जाए दोषी है, क्योंकि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मित्रों, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष नहीं हो सकता, किंतु वास्तविकता यह है कि वह व्यक्ति परमेश्वर द्वारा ही धर्मी ठहराया जा सकता है और तब ही वह निर्दोष कहला सकता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, वह विश्वास द्वारा ही धर्मी ठहराया जाता है। यही एकमात्र ढंग है जिसके द्वारा मनुष्य धर्मी ठहराया जा सकता है। तो आइए इसी परिचय के साथ हमारे साथ देखें लू का रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय प्रथम पद। लू का 16 अध्याय प्रथम पद इस पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। श्रोता, ये एक धनवान व्यक्ति की कथा है और साथ में ये उसके कपटी भंडारी की भी कथा है। भंडारी वो व्यक्ति होता है जिसे दूसरे की संपत्ति की देखरेख का कार्यभार सौंपा जाता है। यहां एक भंडारी है अर्थात प्रबंधक है जिसके हाथ में उसके स्वामी ने सारी धन संपत्ति को सौंप दिया है, किंतु हम देखते हैं कि वह भ्रष्टाचार तथा धन के दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है। उसने अपने स्वामी के धन संपत्ति में घोटाला किया है। इस धूर्त प्रबंधक ने अपने स्वामी की संपत्ति को नष्ट किया। दूसरे पद में लिखा है, उसने उसे बुलाकर ये कहा, ये क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं, अपने भंडारीपन का लेखा दे क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। मित्रों, स्वामी को उसकी दुष्टता का पता लग गया। अब समय आ गया है कि वह अपने स्वामी को लेखा दे। हम देखते हैं कि उसने पश्चाताप करने की अपेक्षा संसार की व्यवस्था का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसी को कहा जाता है आत्म परिरक्षण अर्थात आत्मरक्षा। तीसरे और चौथे पदों में हम पढ़ते हैं, तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं, भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा जिससे कि जब मैं भंडारीपन से निकाल दिया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। मित्रों, वो मजदूरी करने के योग्य नहीं है, उसे भीख मांगने से भी लज्जा आती है, किंतु चोरी करने से उसे लज्जा नहीं आती। दुर्भाग्य से आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है। उसने कहा, 3,000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना वही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है। उसने कहा, 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उससे कहा, ले अपना वही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। हम देख रहे हैं कि उसका स्वामी उसके इस कृत्य का उसे कोई दंड नहीं देखा। आइए 8वां पद देखें, तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। मित्रों, इस कथन से आपको अवश्य धक्का पहुंचा होगा, ये बात किसने कही है। मित्र, धूर्त भंडारी के स्वामी ने ये बात कही है। ये बात स्पष्ट है कि ये व्यक्ति भी इसी प्रकार के धन से धनवान व्यक्ति बना था। उसने भी इसी प्रकार के नियमों व सिद्धांतों को अपनाया था, इसलिए वह अपने धूर्त व कपटी भंडारी की प्रशंसा करता है। वो कहता है कि तूने बुद्धिमानी से कार्य किया है, तूने संसार के नियम के अनुसार कार्य किया है। मित्रों, ये वो संसार है जो प्रभु यीशु मसीह से घृणा करता है। संसार का नियम है, कुत्ता कुत्ते को फाड़ खाए। हम देखते हैं कि सांसारिक स्वामी अपने सांसारिक भंडारी अर्थात प्रबंधक की बुद्धिमत्ता की उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता है। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि संसार की संतान ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। इसका अर्थ है कि इस संसार के लोग अपने धन का परमेश्वर की संतान से अधिक बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की संतान अपनी धन संपत्ति को बुद्धिमानी के साथ प्रयोग नहीं कर पाते, अपेक्षाकृत संसार के लोगों के। अग्रिम पद और भी अधिक चौंकाने वाला पद है, नवा पद देखें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। यहां अधर्म के धन का क्या तात्पर्य है? अधर्म के धन का तात्पर्य है रुपया, पैसा और संपत्ति। इसके लिए यूनानी भाषा में मामोन शब्द का प्रयोग हुआ है। रुपया पैसा अर्थात धन संपत्ति बुराई नहीं है, ये धर्म और नैतिकता के क्षेत्र से बाहर है। किंतु बुरा क्या है? बुरा है धन का लोभ, क्योंकि धन का लोभ प्रत्येक बुराई की जड़ है। मसीहु के विश्वासी जन के लिए रुपया पैसा एक आत्मिक वस्तु है। उसे अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, जहां उसे संसार हानि नहीं पहुंचा सकता। हमें अपने रुपए पैसे को बुद्धिमानी के साथ उपयोग में लाना चाहिए, फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, भोग विलास में अपने धन संपत्ति को नहीं उड़ाना चाहिए, वरन उसका प्रयोग परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के कार्य में करना चाहिए। हमारा व्यापार मसीही ढंग से होना चाहिए, हम इस धन के लोभ से दूर रहें, हम इस धन द्वारा संचालित ना हो, वरन हम स्वयं इस धन का संचालन करें, हम इसके स्वामी हों, इसके दास नहीं। जब हम इसका अर्थात परमेश्वर के इस धन का परमेश्वर के कार्य में प्रयोग करते हैं, तो हम वास्तव में बुद्धिमानी के साथ इसका प्रयोग करने वाले ठहरते हैं। और ये सत्य है कि जब हम इस धन का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे, तो अपने जीवन के अंतिम समय में हमारा स्वागत स्वर्ग में किया जाएगा। जब 10 और 12 पदों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य ना रहे, तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? मित्रों, हम भौतिक वस्तुओं के भंडारी हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का है। और इसलिए हम इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि परमेश्वर की संपत्ति को किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस संसार के लोग अपने भंडारीपन में ज्योति की संतान से अधिक बुद्धिमान हैं। कितने मसीही हैं जो इस भौतिक धन संपत्ति का बुद्धिमानी के साथ उपयोग करते हैं, वहां खर्च करते हैं जहां आवश्यकता है। बहुत से लोग हैं जो इसका उपयोग बुद्धिमानी के साथ नहीं करते, उसे वहां व्यय करते हैं जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। बारहवें पद में प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि जब तुम भौतिक संपत्ति का जो तुम्हें दी गई है उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, उसे सही ढंग से परमेश्वर के कार्य के लिए, उन्नति के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, तो क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय धन सौंपेगा? रुपया पैसा एक आत्मिक मामला है। आप न केवल इसको दान करने के लिए उत्तरदायी हैं, वरन आप इसको किस प्रकार व्यय करते हैं इसके लिए भी आप उत्तरदायी हैं। 13वें पद में हम पढ़ते हैं, यहां प्रभु जी बताते हैं कि कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वह एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां प्रभु यीशु मसीह एक सिद्धांत बताते हैं, हम संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम एक से घृणा करेंगे और दूसरे से प्रेम। मित्रवर, आप परमेश्वर और संसार अर्थात मैमोन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अग्रिम पदों में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह लोभी फरीसियों को उत्तर देते हैं। 14 से 18 पदों को देखें, यह इस प्रकार से लिखा है, फरीसी जो धन के लोभी थे उसकी इन सब बातों को सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदयों को जानता है। वह जो मनुष्यों में अति सम्मानित है परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। यूहन्ना के समय तक तो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ, तत्पश्चात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है। परंतु व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने की अपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है। प्रत्येक जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है व्यभिचार करता है, और जो पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है तो वह भी व्यभिचार करता है। मित्रों, यहां फरीसियों ने स्वयं को दोषी पाया है। परमेश्वर उनके हृदयों को जानता है, वो आपके हृदय को भी जानता है, परमेश्वर मेरे हृदय को भी जानता है। मसीही जीवन में तलाक का कोई स्थान नहीं है और हमको परमेश्वर के इस नियम को गंभीरता के साथ समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वो व्यभिचारी है, और जो पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचारी है। इसलिए यहां तलाक का कोई स्थान नहीं है। 19 से 31 पदों में प्रभु यीशु मसीह धनवान व्यक्ति और लाजर अर्थात निर्धन कंगाल की घटना का वर्णन करते हैं। ये एक अन्य महान दृष्टांत है और मेरा विश्वास है कि ये सच्ची घटना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हीं उदाहरणों को लेते थे जिनसे उनके श्रोता पूर्व परिचित होते थे। 19 से 23 पदों में इस प्रकार से वर्णन है, एक धनी पुरुष था जो सदा पैंजनी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास से रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ था उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उनसे वह पेट भरने को तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है, इसी प्रकार लाजर भी बुरी वस्तुएं, पर अब वो यहां शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहां से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो ना जा सके, और वहां से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी हैं, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाए नहीं सुनेंगे। हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति की आत्मा अधोलोक में अत्यंत पीड़ा वाले खंड में जाती है। ये वो स्थान है जहां भटके हुए पापी जाते हैं, और ये भिक्षुक उस उपखंड में जाता है जो इब्राहिम की गोद कहलाता है। यहां और भी बातें हैं, यदि प्रभु जी उन्हें प्रकट ना करें तो हम उन्हें समझ नहीं सकते। यहां धनवान भिखारी बन गया है और भिखारी धनवान बन गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप मसीह के विश्वासी का शरीर कब्र में जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, किंतु उसकी आत्मा सीधे मसीह यीशु के पास पहुंचती है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों के 5:8 में बताया गया है कि हम पूर्ण साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। किंतु मित्रों, परमेश्वर से दूर भटके हुए पापी अधोलोक में जाते हैं। आपको अपना अंतिम गंतव्य स्थान अर्थात मंजिल चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। मित्रवर, आपको अपने इसी जीवन में यह निर्णय लेना है कि आपको मृत्यु के पश्चात कहां जाना है। मृत्यु के पश्चात आपके पास दूसरा अवसर नहीं होगा। 27 और 28 पदों में हमने देखा कि उस धनवान व्यक्ति को अपने भाइयों की चिंता है। वो चाहता है कि वे पश्चाताप करें, अपना मन फिरा लें, इससे पूर्व की समय निकल जाए। मित्रों, मृतक हमें सुसमाचार सुनाने नहीं आ सकते, किंतु जिन्होंने इसी जीवन में नए जन्म का अनुभव किया है वे ही सुसमाचार सुना सकते हैं। अब इन्हीं वचनों के साथ आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।